नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार अपने विश्वासियों को प्रयोग में लिया, और इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह बचाया जाए। हमने देखा राहाब वेश्या को, जो एक अन्य जाति स्त्री थी, परंतु उसने परमेश्वर पर और उसके लोगों पर विश्वास किया और वह बचाई गई। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दान स्वरूप दिया है। यद्यपि कि हम दुर्बल और कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, आप चाहते हैं कि हम चंगे किए जाएं, आप चाहते हैं कि हम शांति प्राप्त करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, एक एक से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान और चिंतित हैं, इतना ही नहीं, रोजगार की तलाश में हैं, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, या किसी प्रकार के ऐसे दबाव और तनाव में हैं। परमेश्वर पिता, आप सबकी सहायता करें, उन्हें आशीष दें, आज के वचन के द्वारा आप उन्हें हिम्मत और धैर्य दें। आपका वचन जीवित है, आप हम सब से बातचीत करेंगे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों विश्वास के ऊपर में अध्ययन कर रहे हैं, और यह इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय से है, जिसमें हमने अन्य लोगों के विश्वास के बारे में भी देखा है। तो आइए आप मेरे साथ इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 36 से 38 पद को पढ़िए। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 36 से 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, कई एक ठड्ढों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। मेरे मित्रों, यहां एक और समूह है जिसने युद्ध में तो महान विजय प्राप्त नहीं की और न ही बड़े बड़े दर्शक समूहों के सामने प्रकट हुए कि परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें, परंतु वे परमेश्वर के महान नायकों में हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने कष्ट उठाए, ठट्ठों में उड़ाए गए, बंदी बनाए गए, प्रताड़ित किए गए। जेरोम कहता है कि यशायाह को आरे से काटा गया था, अनेक जन तलवार के द्वारा काट डाले गए थे। मैं चाहता हूं कि आप यहां विषमता को देखें। पद 33 और 34 में हम योद्धाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने विश्वास ही के द्वारा युद्ध जीते। लिखा है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। परंतु यहां पद 37 में कई एक तलवार से मारे गए। मेरे मित्रों, आप क्या कहेंगे? एक समूह तो विश्वास के कारण तलवार की धार से बच गया और एक समूह विश्वास के कारण तलवार से मारा गया। मेरे लिए यह बात बहुत ही कठिन है। धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? हो सकता है कि यह प्रश्न आपके जीवन में या मन में भी आता हो। यदि आप आज अच्छे स्वास्थ्य में हैं, तो आप अन्यों के लिए कह सकते हैं कि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, परंतु उन्होंने विश्वास के कारण ही सब कुछ सहन किया। उन्होंने उसे परीक्षा कभी नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहन किया क्योंकि उनमें विश्वास था। जी हां, वे अंधकार में, लंबी रात में, घोर कष्टों में और मुक्ति का मार्ग न दिखाई देने पर भी परमेश्वर में विश्वास रखा। वे विश्वास से नहीं भटके। कई एक सताए गए, कई एक तलवार से मारे गए। भजन संहिता 34 उसके 7 और 17 का संदर्भ देना अति उत्तम है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका भय मानने वालों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है। धर्मी जन पुकारता है और परमेश्वर सुनकर उसका उद्धार करता है। परमेश्वर निश्चय ही ऐसा करता है। परंतु उन कई एक के बारे में क्या कहें जो तलवार की धार से बच नहीं पाए? उनके बारे में क्या कहें जो सताए गए थे? स्तेफनुस अपने धर्म गुरुओं से कहने योग्य था, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 52 पद में, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। प्रभु यीशु ने तर्शीश के शाऊल, जो एक अति विद्वान फरीसी को बुलाया तो कहा था कि वह उसे बताएगा कि उसके नाम के निमित्त उसे कैसे कैसे कष्ट भोगने होंगे। आप इसे प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 16 के 33 में प्रभु यीशु स्पष्ट कहता है कि संसार में हमें क्लेश सहना होगा, परंतु हम ढाढ़स बांधें क्योंकि प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 22 पद में पौलुस और बरनाबस के लिए लिखा है कि वे चेलों के मन स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे मित्रों, अनेकों ने युद्ध जीतकर और मुक्ति पाकर अपने विश्वास का प्रदर्शन किया है, परंतु असंख्य विश्वासियों ने विश्वास के लिए कष्ट उठाए। कलीसिया के इतिहास में अनेक विश्वासियों ने विश्वास के लिए कष्ट उठाए और समाप्त हुए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी कलीसिया की एक महिला सदस्य थी जो बहुत बीमार थी। यदि कोई उसे छूता भी तो दर्द के कारण वह चीख पड़ती थी। अपनी मृत्यु से पूर्व उसे अवर्णित शारीरिक कष्ट होता था। इस पल भी हजारों विश्वास के नायक बिस्तर में पड़े कष्ट भोग रहे हैं। विजय पाना, रोग मुक्ति पाना बहुत अच्छा है, परंतु कष्ट उठाने वालों के विषय में आप क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र में कष्ट उठाने वाले एक प्रचारक के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्वास क्या क्या कर सकता है। विश्वास के द्वारा लोगों ने युद्ध में जय प्राप्त की है। विश्वास के द्वारा लोगों ने शेरों के मुंह को बंद किए। विश्वास के द्वारा लोगों ने आग की ज्वाला को ठंडा किया। विश्वास के द्वारा वे तलवार की धार से बच निकले और विश्वास के द्वारा उन्होंने कष्ट उठाए तथा विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी जान तक दे दी। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। यह शहीद नहीं वरन एक ऐसा विश्वासी समूह है जो स्वभाव में बड़े बड़े प्रदर्शन तो नहीं दे पाया, परंतु बाइबल के नायकों में से ये एक हैं। मेरे प्रियो, इस प्रश्न के विषय में मैंने जो अभी हाल ही में सीखा है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में प्रेरित लिखता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में भागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और पौलुस ने कुलुसियों की कलिसिया को लिखा, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 24 पद में, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की कमी उसकी देह के लिए अर्थात कलिसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के कष्टों की कमी को कैसे पूरी करता था? क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा पूर्ण एवं सिद्ध नहीं था? निश्चय ही वह पूर्ण एवं सिद्ध था, परंतु प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय कुछ ऐसे कष्ट भी उठाए थे जिनका संबंध मुक्ति कार्य से नहीं था। क्रूस पर उन्होंने जो कष्ट उठाए उनमें तो हम सहभागी नहीं हो सकते, परंतु यदि हमें उसके लिए कीमत चुकाना है तो वह उसके कष्टों की कमी को पूरा करना है, चाहे हमें थोड़ा ही कष्ट क्यों ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मुझे भी कई बार मेरी बीमारी से चंगा किया है। मैं आनंदित और मगन होता हूं। मैंने परमेश्वर के सामने शपथ खाई थी कि मैं चंगाई पाने पर उसका महिमान्वन करूंगा। मैंने इसका पर्याप्त उल्लेख किया है। इसके बाद मेरे पास सैकड़ों पत्र आते हैं कि मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करूं, और मैं करता भी हूं। उन्हीं में से एक के बारे में पत्र आया कि अब वह इस संसार में नहीं है। परमेश्वर किसी रोगी को चंगा करे यह आवश्यक नहीं है। कुछ को चंगाई प्राप्त होती है तो कुछ को नहीं। आज अस्पतालों में हजारों लोग हैं और बिस्तरों पर कष्ट उठाते हैं। मेरे मित्रों, मुझे भी बीमारी से मुक्ति दिलाने के बाद परमेश्वर ने एक अन्य बीमारी मुझे दी। उसने कहा कि मैं तेरी देह में एक कांटा चुभाऊंगा कि तू मुंह बंद रखे। तुझे यह जानना होगा कि मैं सदैव ही चंगाई नहीं देता हूं। कष्ट उठाने वाले वास्तव में महान संत होते हैं। वे ही हैं जो सच्चे विश्वास को जानते हैं। तू नहीं जानता कि ऐसे समय में विश्वास करना क्या है। इसके बाद परमेश्वर ने मुझ पर पीलिया का प्रकोप छिड़का। मैं सोचने लगा कि परमेश्वर मुझसे कुपित है, अतः मैंने उससे बात की। उस समय उसने मुझे पद 37 दिया। मेरे मित्रों, यदि आप रोग हरण की गवाही दें तो मैं आपके साथ हूं, या आप व्यापार की समृद्धि की गवाही दें तो यह जान ले कि असंख्य विश्वासी आज भी पीड़ा की आग से गुजर रहे हैं। वे बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? विश्वास के द्वारा। उनका विश्वास मुझसे बड़ा है और वे मुझसे अधिक महान संत हैं। मुझे सेवकों के पत्र मिलते हैं और कुछ पत्रों को पढ़कर मुझे विनम्रता प्राप्त होती है। वे किसी कोने में सेवा कर रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां लेखक विश्वासियों के एक समूह के बारे में चर्चा कर रहा है जो कष्टों में भी विश्वास को थामे रहे। मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को कभी ना भूलें जो विश्वास से जीते हैं और विश्वास से मरते हैं। उनके कष्ट समाप्त हो गए और वे प्रभु के पास हैं। मेरे लिए इस अंश का अब एक नया अर्थ उभरा है और आशा करता हूं कि आपके लिए भी इसमें एक नया अंश प्रकट होगा। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। यह कौन सी प्रतिज्ञा है जो उन्हें नहीं मिली? परमेश्वर ने अनेक प्रतिज्ञाएं की और उन्होंने बहुत सी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति भी देखी, परंतु उनके पुनरुत्थान और पृथ्वी पर प्रभु राज की स्थापना की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने नाम के निमित्त लोगों को बुला रहा है। जैसा यहां पर लिखा है कि वह अनेक पुत्रों को महिमा में अपने घर ले आए। मेरे प्रियो, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 40 पद, इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। परमेश्वर हमें अपने मन में बसाए हुए है, जो एक महान बात है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। परमेश्वर धीरज धरकर इस संसार से अपने लिए मनुष्यों को बुला रहा है। जी हाँ, वह आपको और मुझे भी बुला रहा है और इस समूह को हम कलीसिया कहते हैं। जब तक कलीसिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वह मनुष्यों को बुलाता रहेगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हमने संसार और विश्वास के कामों को देखा है। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं एक सप्ताह या दो महीने या तीन महीने मन फिराव करने वाले मनुष्य की गवाही सुनना नहीं चाहता, जबकि मैं उसके उद्धार से अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। मैं इसका एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मुझे एक पत्र मिला जिसमें मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप एक मनुष्य ने 2011 में उद्धार पाया था। वह हाल ही में स्वर्ग सिधार गया और उसके अंतिम संस्कार पर उसके लिए बहुत ही अच्छी गवाही के वचन कहे गए। मुझे युवक कहते हैं कि उनकी गवाही के परिणाम स्वरूप अनेकों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, काश तुम आज से 3 वर्ष बाद या 30 वर्ष बाद आकर कहो कि इन लोगों ने विश्वास का जीवन जिया और विश्वास ही में मर गए। कुछ लोगों के विचार में विश्वास परखा नहीं जाता है। आप उसके विषय निश्चिंत नहीं रह सकते, उसका कोई आधार नहीं है। मेरे मित्रों, यहां गवाहों का एक समूह है, उनमें से अनेकों का जीवन दीर्घकालीन था और वे विश्वास में जी रहे थे और उनका अनुभव था कि विश्वास का जीवन उचित है। मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करने का प्रचार नहीं करता हूं, मैं तो बाइबल का संदेश सुनाता हूं और पवित्र आत्मा को मनुष्यों में काम करने देता हूं। मैं मनुष्यों में परमेश्वर का वचन सुनाता हूं और मुझे प्रतिक्रिया में पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि मेरे संदेश से उनके विश्वास को दृढ़ता प्राप्त हुई है। मेरे लिए आवश्यक नहीं कि आप मुझे बताएं कि विश्वास रखना कैसा अद्भुत है या यह कार्यकारी है। मैं वर्षों से इसका अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि यह एक अद्भुत भाव है और कार्यकारी भी है। मेरे मित्रों, जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा तब लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज अनेक जन आत्मिकता में चिमगादड़ के समान अंधे हैं। वे कहते हैं कि हमें इसका प्रमाण चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और अपने जीवन से पाप निकालना चाहते हैं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो मैं आज से 3 वर्ष बाद भेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आवश्यक नहीं कि कोई आपको सिद्ध करके दिखाए। आप स्वयं ही जान लेंगे कि विश्वास कार्यकारी है। आज असंख्य जन इस बात पर आमीन कहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि विश्वास काम करता है, वह वास्तविक है, वह सच्चा है। मित्रों, क्या आप कल्पना से वास्तविकता में आ गए हैं? क्या आपने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु आपके लिए क्या कर सकता है? मेरे प्रियो, आज आपके पास में अवसर है कि आप भी उन महान सत्यता को जानकर उस पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहा है। कल के जीवन को किसी ने नहीं देखा है। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। मेरे जवान भाई और बहन, यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकटता में आ जाएं। मेरे माता पिता, ये जीवन आपका जो है बहुत कीमती है। परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि वह आपके जीवन में उस विश्वास को देखना चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत हुए हैं और आज आप में से कई लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आप उस पर विश्वास लाएंगे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।